मिस्टर राणावत अंदर आए। श्रद्धा किचन की तरफ जा रही थी तो वो उसके सामने आकर खड़े हो गए और दोबारा अपने हाथ जोड़ते हुए बचारों वाला चेहरा बनाकर बोले, प्लीज ऐसा मत करो। उस दिन तुमने अपनी फ्रेंड को नौकरी देने के लिए कॉल किया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो लड़की तो ठीक से पढ़ी लिखी तक नहीं है। आज मुझे जरूरत पड़ी है तो तुम मना कर रही हो। तुम इस तरह पीछे नहीं हट सकती। श्रद्धा, अगर मेरे हाथ से वो कंपनी चली गई तो जो जो भी चली जाएगी, इस वजह से मेरी पूरी फैमिली मुसीबत में आ सकती है। मिस्टर राणावत श्रद्धा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। श्रद्धा ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, अरे तो आप अपने ऊपर लटकी तलवार को खुद संभालिए ना, वैसे भी आपको नहीं पता चाहत अब कितना डर गई है, श्रद्धा ने एक्टिंग करते हुए कहा। वो उदास चेहरे के साथ उनके हाथों से नीचे किचन में गई और वहां जाकर बोली, कल आपके बॉस ने उसे इतना डरा दिया है कि उसके दिमाग में जॉब का ट्रॉमा बैठ गया है। बड़ी मुश्किल से उसने कल अपने लिए नौकरी ढूंढी। वहां भी वो बुरी तरह से कर रही थी और बिना कोई गलती किए यही कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब गलती से हुआ। ये कहकर श्रद्धा ने चिल्लाते हुए मिस्टर राणावत से कहा, ऐसे में क्या आपको लगता है वो आपके खतरनाक बॉस के पास आकर काम करेगी? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मिस्टर राणावत बोले। उनका नेचर है तो खतरनाक ही। उनकी तरफ से अच्छी सैलरी का ऑफर दिया गया है तो तुम एक बार चाहत से बात तो करके देखो। कितनी दे रहे हैं? श्रद्धा ने तिरछा मुंह करते हुए पूछा। 50,000 तक तो दे देंगे, मिस्टर राणावत ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। कंपनी के रूल हार्ड हैं तो वो किसी को भी बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के काम पर नहीं रखते, मगर चाहत को ये मौका मिल रहा है तो उसे ये मौका खोना नहीं चाहिए। ये मौका कभी किसी को उसकी लाइफ में नहीं मिलता। चाहत के लिए खुद किस्मत चलकर उसके रास्ते पर आई है। उस लड़की को देखकर साफ पता चलता है कि उसे पैसों की कितनी ज़रूरत है। ऐसे में उसके लिए एक अच्छा अवसर है, तुम एक बार फिर बात करके देखो, शायद बात बन जाए। जब श्रद्धा उनके गिड़गिड़ाने पर नहीं मानी तो मिस्टर राणावत ने उसे पैसों का लालच दिखाया। श्रद्धा अच्छे से जानती थी कि इस वक्त चाहत को पैसे की सख्त ज़रूरत है, फिर भी चाहत से बात किए बिना वो मिस्टर राणावत को हाँ नहीं कह सकती थी। श्रद्धा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं उससे बात करके देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे रात जो भी हुआ था उसके बाद वो हाँ कहेगी। चाहत ने अपने लिए नई नौकरी ढूंढ ली है, उम्मीद है आपको भी जल्द ही नई नौकरी मिल जाए। श्रद्धा ने इस तरह अपनी बात खत्म की और किचन में चली गई। मिस्टर राणावत समझ गए थे कि अब श्रद्धा से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, तब तो लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए, घर जाकर अपने लैपटॉप पर रिजाइनिंग लेटर लिखना चाहिए। उन्होंने दुखी वाला चेहरा बनाया और इसी चेहरे के साथ चले गए। जैसे ही वो गए, श्रद्धा ने फौरन जाकर दरवाज़ा बंद किया और चाहत को फ़ोन लगा लिया। चाहत ने फ़ोन उठाया तो श्रद्धा उसके फ़ोन उठाते ही बोली, यार आहान ओबेरॉय तो तेरे पीछे तो पूरी तरह से पागल हो गया। वो तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहता है और सैलरी भी अच्छी ऑफर कर रहा है। मुझे लगता है उसका तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। तुम तो दिखने में भी खूबसूरत हो। ऐसे अमीर लोग खूबसूरत लड़कियों को जानबूझकर नौकरी पर रखते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे देकर अपनी रातें रंगीन कर सकें। मैं नहीं जाने वाली उसके पास, चाहत ने अपने हाथ को अपने सीने पर रखते हुए कहा। मुझे किसी की रातें रंगीन नहीं करनी है। हाँ, श्रद्धा उसकी बात पर हामी भरते हुए बोली, मैंने उन्हें बोल दिया है तुम्हें नई नौकरी मिल गई है। हाँ हाँ ठीक है, चाहत ने कहा और उसने इधर उधर देखते हुए मायूसी से कहा, अच्छा तुमने नई नौकरी के लिए क्या सोचा है? कहीं पर है कोई काम? मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। अगर वो आदमी उस रात मुझे किस नहीं करता तो मैं सच में आज उसके पास चली जाती। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। मैंने अभी तक तो नहीं देखा लेकिन अब देखने जा रही हूँ। शाम तक देती हूँ तुम्हें कोई अपडेट, श्रद्धा ने उसे जवाब दिया। ठीक है, देखकर मुझे बताना, चाहत ने कहा और कॉल कट कर दिया। चाहत श्रद्धा से बात करके हटी ही थी कि उसकी नानी पार्वती जी वहाँ पहुँच चुकी थी। निशा ही उन्हें लेकर आई थी। चाहत दौड़कर उनके पास गई और उनके गले लग गई। नानी, मैंने आपको बहुत मिस किया, बोलते हुए चाहत उनसे अलग हो गई। फिर चाहत ने नोटिस किया कि हर बार उसकी नानी एक बैग के साथ आई थी, लेकिन इस बार उनके साथ चार लगेज मौजूद थे। फिर उसने निशा की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी उतरा हुआ था। निशा जी जानती थीं कि चाहत क्या पूछने वाली है। उसके पूछने से पहले ही निशा ने मायूसी से कहा, भैया ने माँ को घर से निकाल दिया है, अब से माँ हमारे पास ही रहेगी, बोलते हुए उनका चेहरा उदास हो गया। वो जानती थीं चाहत पहले ही उनके चक्कर में काफ़ी प्रेशर ले रही है। ऊपर से उनकी माँ का आना मतलब एक और इंसान का खर्च पड़ना था। उनकी माँ की तबीयत की ठीक नहीं रहती थी। पार्वती जी को बुरा ना लगे या उनके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो, इसलिए चाहत हंसते हुए बोली, नो प्रॉब्लम मम्मा, अभी अभी श्रद्धा से बात करके हटी हूँ, उसने एक नई जॉब बताई है जो फुल टाइम है और सैलरी भी अच्छी खासी है। फिर चाहत ने अपनी नानी की तरफ देखा और उनके दोनों गाल पकड़कर कहा, नानी आप मेरे लिए बहुत लकी हो, आपके कदम इस घर में पड़े और देखिए मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी बात सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो दोनों आपस में बातें करने में लगी थीं। तभी अचानक निशा को फिर से चक्कर आया और इस बार वो नीचे गिर गईं। उन्हें देखकर चाहत और पार्वती जी दोनों ही घबरा गए और जल्द ही उन्हें पास के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे जब आहान ने दोबारा मिस्टर राणावत को कॉल किया। क्या खबर है? मिस्टर राणावत अपने घर में अपने कमरे में अपने लैपटॉप के ठीक सामने बैठे थे और आधा रिजाइनिंग लेटर लिख चुके थे। मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुका हूँ पर वो लड़की अब काम पर नहीं आने वाली। ओ सही है, मुझे लगा था आप ये कर लेंगे पर आपसे नहीं हुआ। चलिए उस लड़की का तो पता नहीं पर मैं आपकी जगह किसी और को ढूंढता हूँ, आहान ने कहकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता आपने उस लड़की को क्या कहा मगर उसकी वजह से वो बहुत डर गई है, मिस्टर राणावत ने अपने चेहरे को टेबल पर पटकते हुए कहा। आहान एक डेस्क पर हाथ रखकर खड़ा था। मिस्टर राणावत की बात सुनकर उसका चेहरा सर्द होने लगा। आप अपनी नाकामयाबी का दोष मुझ पर गढ़ रहे हैं मिस्टर राणावत, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और काफी नॉर्मली बात की। लगता है आपको कहीं और जॉब करने की भी इच्छा नहीं हो रही, तभी मेरे सामने ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आहान ने हल्के गुस्से में कहा जिससे मिस्टर राणावत के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। पर उसकी फ्रेंड मुझसे यही बोली कि वो बहुत डरी हुई है और अब नौकरी पर नहीं आना चाहती, मिस्टर राणावत ने घबराते हुए कहा। आहान खामोश हो गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने अपने मन में सोचा, क्या वो मेरी किस से गल गई? पर वो तो एक नॉर्मल किस थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने मिस्टर राणावत से कहा, मुझे उस लड़की का एड्रेस दो, मैं अब खुद ही उससे मिलकर बात करूंगा।